इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखी जाएगी तेरी कहानी। कैसे प्रभु को सौंप दी तूने पूरी अपनी जिंदगानी। सच्चाई सफाई सादगी का नारा लगाकर भारत की बढ़ाई तूने शान। इस धरती को गुलिस्तां बनाया तू है शाने हिंदुस्तान। कभी दुर्गा कभी शीतला बन वरदानों की वर्षा की। मात्र प्रेम लुटाया सब पर है रूहानी पालना की। तेरी शिक्षाओं की कुंजी ब्रह्मा वत्सों द्वारा पाई है। तेरी यादों को संजोकर एक नई माला बनाई है। एक नई माला बनाई है। एक नई माला बनाई है। कंपेनियन ऑफ गॉड दादी जानकी।
नमस्कार, ओम शांति। आप सभी दर्शकों का कंपेनियन ऑफ गॉड दादी जानकी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हम पिछले एपिसोड में आदरणीय ब्रह्मा कुमार राजयोगी रतन दादाजी से सुन रहे थे दादी जानकी जी के साथ के अनुभव और लंदन में किस प्रकार से सेवाओं का विस्तार हुआ। दादी जी की अथक मेहनत के द्वारा और परमात्मा की ब्लेसिंग्स के द्वारा वो सेवाएं दिन प्रतिदिन किस प्रकार से बढ़ी, हम आगे और भी जानेंगे रतन दादाजी से। जैसे पिछले एपिसोड में दादा हमारे साथ शेयर कर रहे थे कि 40 करोड़ की जो रकम है वो देनी थी और एक भवन, नए भवन का निर्माण होना था, लेकिन 40 करोड़ क्या 5 करोड़ रुपए भी बैंक अकाउंट में नहीं थे, लेकिन वो उसका बंदोबस्त कैसे हुआ। तो हमारे बीच में रतन दादा जी उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब। ओम शांति। तो हम आपसे आगे की कहानी जानना चाहते हैं कि आगे किस प्रकार से फिर आपने अरेंजमेंट किया वो 40 करोड़ का, और वो सेवा स्थान कैसे बना और फिर आगे की सेवाएं कैसे बढ़ी।
ओम शांति। अच्छा, फिर जब ये बात हुई
जी,
तो दादी जानकी बोले अभी दादी प्रकाश मैन से बात करो
जी,
रमेश भाई से बात करो
जी।
रमेश भाई मकान देखते थे दिनों में, और ये पहले बड़ा मकान जो हम विश्व में बना रहे थे, इतना बड़ा मकान अभी कहाँ भी नहीं बना था विश्व में
जी।
तो जब ये बात किया दादी प्रकाश मैन ने, बोलते आपको कम से कम आधा पैसा होना चाहिए तभी काम शुरू करो, नहीं तो कैसे शुरू करेंगे। और रमेश भाई बोले चलो एक फ्लोर बनाओ अभी, फिर बाद में देखो पैसा आए दूसरा फ्लोर बनाओ, फिर तीसरा बनाओ। मैंने कहा नहीं, ऐसा करेंगे तो खर्चा डबल होएगा, क्योंकि एक एक फ्लोर बनाएंगे तो खर्चा बहुत महंगा हो जाएगा। तीसरा ये था कि हमारे जो क्लासेस वो टाइम चल रहे थे ना, कोई कम्युनिटी सेंटर हमने लिया था गवर्नमेंट से, जहाँ हम क्लास करते थे सुबह को, मुरली और क्लास दादी जान की आती थी, और उसके बाद खाली करना पड़ता था
जी।
वो हमारा नहीं था
जी।
उनसे लिया था, दो कमरे थे, एक इंग्लिश क्लास चलता था वहाँ, दो क्लास चलते इंग्लिश में, दूसरा हिंदी में
जी।
तो फिर वो भी जो स्थान था और भी संस्थाएं यूज करती थी
जी जी।
तो ऐसी मुसीबत होती थी कि और संस्थाएं जो यूज करती थी सोशल संस्थाएं या धार्मिक, तो वहाँ तो धार्मिक या सोशल संस्थाएं जो भी है शराब पीती है, शराब पीते हैं, मांस मछली खाते हैं
जी।
तो उनके जो प्रोग्राम चलते थे रात को, लेट नाइट, कभी कोई क्लब, कभी कोई संस्था, कभी सोशल संस्था, तो फिर क्या होता था जब भी हम सुबह को जाते थे ना, तो वो दो कमरे में जहाँ हमारी मूली क्लास चलती थी, दादी जान की आके मूली पढ़ती थी, वहाँ शराब के खाली डब्बे पड़े होते थे, मांस मछली के टुकड़े पड़े होते थे
जी, जी।
और पूरा गंध कचरा, सिगरेट बीड़ी के टुकड़े पड़े होते थे। तो हमारे भाई बहन सुबह को 3 बजे आके पूरी सफाई करके, वास धूप करके, रूम को साफ करके अपना गालीचा लेके आते थे वैन में, वो डाल के अपना साउंड सिस्टम लेके आते फिर क्लास करते, चाहे ठंडी हो चाहे बर्फ। तो ऐसा हमने 10 साल तक चलाया, एक दिन भी और चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि कब तक ये करेंगे ऐसा
जी।
तो हमको स्थान की आवश्यकता थी, कैसा भी करके जल्दी स्थान बनाए। तो मैंने बोला दादी प्रकाश मन में रोकेंगे तो और भी 2-4 साल और लग जाएंगे, जब तक पैसा इकट्ठा हो, एक फ्लोर बनाएंगे तो खर्चा भी डबल होएगा और काम में नहीं आएगा। और यहाँ हम ऐसी व्यवस्था में सेवा कर रहे हैं, आप समझो कि कितना मुश्किल कार्य हो रहा है
जी।
वो यहाँ रात को ऐसी बातें उन्होंने किया प्रोग्राम में, जो ये सब करके मसी मांस मछली टुकड़ा शराब, सुबह को हम वहाँ योग करें, वहाँ जाके उधर हम मूली क्लास पढ़ें
जी जी,
ये अच्छा है कि नहीं। और बाबा का संदेश कमाल ये हुई, बाबा का संदेश आया जल्दी काम शुरू करो, जल्दी काम शुरू करो, बाबा का संदेश लिया। तो बाबा बोले जल्दी काम, मैंने बाबा को बोला बाबा पैसा ही नहीं है कैसा करें, बाबा बोले आप चिंता मत करो। और बाबा का ये संदेश आया, ये स्थान ब्राह्मणों के सहयोग से बनेगा, अगर कोई कमी होएगी तो बाबा बैठा है
जी,
परमात्मा क्या नहीं कर सकता
जी, बिल्कुल।
तो ये भी अनुभव किया। तो दादी प्रकाश मणि को बोला, फिर भी बोला देखो आप जो कर रहे हो कुछ भी खतरा है, रिस्क है, कुछ हो जाए। मैंने कहा बाबा तो बोलते शुरू करो, आप बोलते थोड़ा और सोच समझ के करो, रमेश भाई थोड़ा भी बोलते हैं क्योंकि वो यहाँ वो मधुबन में, मैं लंदन में, जवाबदारी मेरी, कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो फिर कई कारण प्रॉब्लम हो सकता है। तो फिर हम बैंक के पास गए लोन लेने के लिए, और बैंक से बात किया कि हमको 20 करोड़ लोन दो। तो अभी बैंक बोले कि आपके पास कोई अमानत है, अमानत तो कोई नहीं है, आपके पास कोई इनकम है, इनकम भी नहीं है, हमारी संस्था और टाइम छोटी थी, 100-200 ब्राह्मण मुश्किल थे, और हमारे पास कोई ऐसे इमानत नहीं थी, मकान हुए जो हम सिक्योरिटी दे क्या करें। तो बोला भाग जाओ, हम आपको लोन नहीं देंगे
जी।
कोई भी धंधे वाले, कोई भी जिसने मकान लिया होगा उनको पता होगा, सवाए इनकम गारंटी, सवाए कोई अमानत के कोई भी बैंक वाला लोन नहीं देगा
जी, जी।
तो उन्होंने नाम बोला, जब मैं मधुबन में था तो उनका फैक्स आया कि हमारी मीटिंग, हमारी बैंक वाली मीटिंग ही मेरे पास मिलने को आए और वो लोन नहीं देंगे। मैंने बाबा को बोला, उस टाइम बाबा सीजन थी, बाप दादा मधुबन में आते थे। मैंने कहा बाबा आप बोलते काम शुरू करो और कॉन्ट्रेक्टर को पैसा देना है हमको, हर मास 2.5 करोड़ देना है, हर मास 18 मास का कॉन्ट्रैक्टर है
जी, जी, जी।
और पैसा कैसे देंगे उसको, और बैंक वाला भी नाम बोलता है, आप तो बोलते शुरू करो लेकिन हमको पता नहीं कितना पैसा आएगा कितना नहीं आएगा, कम ज़्यादा हो जाएगा, बैंक वाला हम ये कॉन्ट्रैक्ट हम कोर्ट में लेके जाएंगे, काम के बगैर पैसा नहीं देंगे तो काम करेगा तो। तो बाबा बोले चिंता मत करो, बैंक वाले को लिखो आप चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा, बाबा ने बोला। तो मैंने मधुबन से ही उनको वही शब्द लिखा बैंक वाले को कि मैं अभी माउंट आबू में हूँ, आपका फैक्स मिला, आप चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा। हाँ जो बाबा ने कहा वही मैंने लिखा उसको, चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा, मैं आता हूँ 2 हफ्ते में। तो बाबा की टचिंग ऐसी शक्तिशाली थी, मैं गया उसकी बुद्धि परिवर्तन हो गई, लोन सैंक्शन कर दिया
जी।
हाँ लोन सैंक्शन कर दिया
जी।
और बोला 6 मास के अंदर आपको यूज़ करना, हमें 6 मास तक बाजू में पैसा रख देता हूँ आपके लिए बैंक में, आप ये पैसा 6 मास में यूज़ करना शुरू करो
जी।
तो काम शुरू किया, कंट्रेक्टर को गारंटी मांगता था आपके पैसा है कि नहीं, आप हम काम शुरू करें आप पैसा नहीं दो तो फिर हम बहुत काफ़ी उलझन में पड़ जाएंगे और काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगा। शुरू किया तो हर मास बैंक वाले का लोन तो बैंक में ही पड़ा था, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर हर मास बिल भेजता था 2.5 करोड़ का
जी।
वो उतना ही आता था जितनी आवश्यकता होती थी, न कम न ज़्यादा। तो हम कंट्रेक्टर को देते थे, 6 मास हो गया ऐसे पैसे आते गए, 6 मास हुआ पास तो बैंक वाले का फ़ोन आया
जी।
कि देखो मैं अपना फाइल चेक करा हूँ, आपने लोन तो यूज़ नहीं किया, हमने आपके लिए पैसा बाजू रख दिया है। तो मैंने नहीं किया क्योंकि हमारे पास पैसे आते रहते हैं ब्राह्मणों के सहयोग से। तो बोला आगे क्या करूँ, मैंने कहा अभी इसको 6 मास और बढ़ाओ, आगे मुझे पता नहीं कितना आएगा, कह नहीं सकते, काम तो चल रहा है फुल फोर्स से, कंट्रेक्ट को देना है, लेकिन आगे कितना आएगा ब्राह्मणों के सहयोग से वो कह नहीं सकते, क्या क्या देंगे, क्या कैसे देंगे। ठीक है 6 मास और बढ़ाया, 12 मास हो गया फिर भी लोन यूज नहीं किया, हर मास उतने पैसे आते गए जितनी आवश्यकता थी कॉन्ट्रैक्ट को देने के लिए। फिर 12 मास के बाद फोन आया कि आपने लोन ही नहीं यूज किया, क्या बात है, हम आपके लिए सैंक्शन करके बाजू में रखा है अकाउंट में, आप यूज करो। मैंने कहा अभी पैसे आते रहते हैं इसके लिए यूज नहीं किए। बोला अभी क्या करें, मैंने कहा अभी 6 मास और चलेगा काम, हमको ये पता नहीं कितना आएगा, बैंक बैलेंस 0 है अभी, लेकिन आगे कितना आएगा मुझे पता नहीं, 6 मास और बढ़ा सकते हो बढ़ाओ। और ठीक है हम 6 मास और बढ़ाते हैं, 6 मास और बढ़ाया, फिर भी बाबा की कमाल ये हुई, पैसे आते गए जितनी आवश्यकता थी
जी,
और हमने बैंक का लोन यूज नहीं किया
जी।
फिर 18 मास हो गया
जी।
फिर बैंक वाले का फोन आया, बोला क्या बात है, मैं फाइल चेक करता हूँ आपने पैसा यूज नहीं किया। तो मैंने कहा कि पैसे की आवश्यकता नहीं रही। बोला मैं समझा आपका कॉन्ट्रैक्ट दिवाली में चला गया होगा या कोई डिस्प्यूट होगा। मैंने कहा नहीं दिवाली में गया नहीं, काम खत्म हो गया बिल्कुल। तो बोला बताओ कैसे हुआ ये, मैंने कहा ब्राह्मणों के सहयोग से हो गया। तो तैयार हो गया, बोला पैसे क्या करें, मैंने कहा भैया आपका लोन नहीं चाहिए। सब ब्राह्मणों में इतना उमंग उत्साह था कि हम बैंक का लोन नहीं यूज करेंगे, और सब ब्राह्मणों ने भिन्न भिन्न तरीके से, कईयों ने जाके पार्ट टाइम जॉब लिया, कईयों ने ओवर टाइम किया, कईयों ने संडे को काम किया, कईयों ने मकान बिक्री किया, नवा मकान ले थे, बोले अभी नहीं लेंगे, अभी हम ये पैसा सफल करेंगे ग्लोबल हाउस बनाने में
जी।
डिपॉजिट पड़ा है हमारे पास, कईयों पास डिपॉजिट इकट्ठी हुई थी, मकान ढूंढ रहे थे, बोला मकान नहीं लेंगे जब तक ये ग्लोबल हाउस नहीं बना, बाद में ले लेंगे, वो पैसा दिया। कई माताएं के पास इतनी ज्वेलरी थी, बोले ये ले लो ज्वेलरी ले लो, ये स्वा करेंगे हम यज्ञ में ग्लोबल हाउस में सफल करने के लिए
जी।
तो सहयोग भिन्न भिन्न प्रकार से
मिलता,
सब ब्राह्मणों के बाहर वालों से एक पैसा भी नहीं लिया
जी, जी।
बिल्कुल नहीं, बाहर वालों से बिल बाबा मना किया नहीं लेना है, सब ब्राह्मणों के सहयोग से इतना सहयोग मिला, इतना उमंग उत्साह था कि उनके सहयोग से बन गया। फिर क्या हुआ कि जब बैंक वाले को मैंने बोला हमको आपका लोन नहीं चाहिए, तो बोला मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आके मिलो, नेक्स्ट वीक का प्लान में रखा, आके मिला तो बोलता है कि देखो मैं 30 साल से बैंक में काम करता हूँ
जी, जी।
सीनियर ब्रांच नहीं जोन का हेड हूँ मैं, काफ़ी हाई पोजीशन क्योंकि अमाउंट बड़ी थी वो टाइम में भी, ये हेड जोन में जाना पड़ता है, और अभी तक कई संस्थाएं हमारे पास आती है चाहे धार्मिक चाहे सामाजिक, वो हमारे से लोन मांगती है कोई बिल्डिंग प्रोजेक्ट बनाने के लिए। फिर जब भी उनकी प्रोजेक्ट आधी ख़त्म होती है तो फिर वो बोलती है हमको पैसा कम हो रहा है और पैसा चाहिए
जी।
आप ही की एक ही संस्था है जो मेरे संबंध में आई है,
लोन भी
जिसने
जी
मैं कुछ पैसा तो मांगा छोड़, लेकिन पैसा हम जो सैंक्शन किया वो भी यूज नहीं किया
जी,
क्या कारण है बताओ। तो मैंने कहा कारण बताऊं? हाँ बोला बताओ। मैंने कहा दुनिया में जो भी संस्थाएं, वो अंग्रेज भाई था, उसको बीके कुछ नॉलेज नहीं था
जी,
संबंध में खाली था ऑफिशियल संबंध में बस
जी जी,
बैंक टू ब्रह्मा कुमारी कुछ ज्ञान भी नहीं था
जी।
तो मैंने कहा देखो दुनिया में जो भी संस्थाएं हैं ना वो भगवान के नाम पे काम करती है
जी,
हमारी एक ही संस्था है ब्रह्मा कुमारी की जो स्वयं भगवान ने स्थापन की है
जी।
तो बोला मैं नहीं मानता हूँ, नहीं 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 ऐसे सब बोलते हैं भगवान की संस्था है, भगवान की संस्था है, मैं नहीं मानता हूँ। 5-10 मिनट उसके ऊपर उसने आर्ग्यू किया। मैंने कहा ठीक है आप मानो या न मानो, मैं आपको 5 बातें बताता हूँ और उसके बाद आप जो कहना चाहो करो
जी।
तो उसको मैंने 5 बातें बताई, उसको भी 10-15 मिनट लगता है बताने में क्योंकि अभी ये टाइम तो नहीं होगा आपको बताने में सब
जी जी जी,
तो 10-15 मिनट लगा बताने में। तो इतना चकित हो गया, आपकी संस्था ऐसी है ऐसी है? हाँ ऐसी है। हमारे संस्था के बारे में बताया उसको कैसे भगवान ने स्थापन किया। क्या बोलता है? बहुत आकर्षित हो गया, बोला मैं आपके सामने आपके संस्था के सामने निमन करता हूँ
जी जी,
आई बो बिफोर यू, आई बो बिफोर ऑर्गेनाइजेशन, आगे आपको जितना भी पैसा चाहिए हमारे पास आना, हम देंगे आपको जितना पैसा चाहिए
जी।
इतना प्रभावित हो गया
जी।
और अभी मैं ये भी करता हूँ, आपसे हम कोई बैंक चार्जेस नहीं लेंगे
जी।
क्या होता है बैंक में अकाउंट होते हैं ना, खास कर जो चैरिटी होते हैं या बिजनेस वाले होते हैं तो अकाउंट खोलते हैं तो बैंक चार्ज होते हैं, कभी आप पेमेंट बाय टेलेक्स भेजो या बैंकर्स ड्राफ्ट लो, जिनको बैंक का अकाउंट होगा पता होएगा, पर वो चार्ज करती है। तो हमारे तरफ से बहुत पेमेंट चलती है
जी,
बहुतों को देने के लिए और बैंकर्स ड्राफ्ट
जी,
और टेलेक्स ट्रांसफर बहुत करने पड़ते हैं
जी, जी,
और आपसे एक भी हम पैसा चार्ज नहीं करेंगे, ऐसा भी हमने करोड़ों रुपए बचाया अभी तक
जी, जी,
कुछ भी चार्ज नहीं किया और आगे जो भी पैसा आपको चाहिए हमारे पास आना, हम आपको देंगे बिल्कुल लो इंटरेस्ट पे
जी, जी,
कुछ नहीं। तो ये परिवर्तन आया बैंक में, वो बैंक के मैनेजर में
जी,
तो ये अनुभव रहा कैसे पैसा आया
जी,
आ गया कैसे बाबा ने कमाल करके मकान बनाया। मैं गया मधुबन में, काम तो बहुत था
जी,
तो बाबा मुझे बोलता है, तभी ओम शांति भवन में क्लास चलते थे
जी,
91 की बात है, उसको भी अभी
जी
30-29 साल हो गए। तो मैं बैठा हूँ सोफा पे फ्रंट में, तो बाबा मूली के बाद मेरे तरफ देखता है, बोलता है रतन आपने कमाल करके दिखाई
जी, जी
मेरी बैटरी चार्ज कर ली पूरी
जी, जी।
मैंने कहा बाबा मैंने कुछ नहीं किया, आपने सब कुछ किया। नहीं 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 आपने सब किया, निमित्त हमको रखा करण करण और बाबा है, तो मेरे को आगे रखा है बस, बाकी करने कराने वाला बाबा है। कई इम्पॉसिबल काम कराए मेरे द्वारा लेकिन बाबा ही करण करा मारा। मैं बोलता मैं निमित रखा है, मेरे को पता नहीं आपने मेरे को क्यों चुना है लेकिन मेरा भाग्य आपने चुना है, मेरे को निमित किया है, परंतु करते सब आप हो, ऐसा अनुभव बहुत है।
फिर दादी जानकी जी के जीवन से आप क्या प्रेरणाएं लेते हैं, दादी जी ने जो इतनी सेवाएं की?
हाँ तो दादी जानकी अथक है, उसका एग्जाम्पल बताता हूँ
जी।
तो एक टाइम दादी न्यूयॉर्क से आई लंदन आई, तो 9 बजे उसका प्लेन पहुंचा
जी, रात को या दिन?
सुबह को, सुबह को 9 बजे पहुंचा और 10:30 पे हमारी मीटिंग थी दादी के साथ
जी।
तो मैं 10:30 पहुंच गया
जी।
तो बहनों ने बोला, सिटिंग रूम में बैठा था, मीटिंग रूम में, तो बोला दादी की तबीयत ठीक नहीं थी। प्लेन जर्नी में न्यूयॉर्क से जब आई ना लंदन में, तो प्लेन में नींद भी नहीं किया है, उसको कफ कोल्ड भी हो गया है, तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने कहा शायद मीटिंग नहीं करेगी आज दादी, क्योंकि दादी एक तो सोई नहीं प्लेन में, और दूसरा तबीयत भी ठीक नहीं है, कोल्ड कफ है, गला भी थोड़ा ख़राब, मीटिंग शायद नहीं करेगी। मैंने कहा पूछो, तो दादी अभी ना आ रही है, दादी रहती, आप लंदन तो नहीं आए ना अभी तक?
लंदन
तो उस टाइम दादी बाबा भवन में रहती थी, तो वहाँ दादी का बेडरूम भी वहाँ था, मीटिंग रूम भी वहाँ होता था, सिटिंग रूम भी उधर एक वही फ्लोर पे, एक कोने में दादी की मीटिंग रूम और एक दूसरे पास बेडरूम होती थी। तो हमारी मीटिंग हुआ थी ग्लोबल हाउस बनने के पहले की बात है
जी, जी।
अच्छा, फिर तो बहन दादी आई ना के तैयार होके, नहीं मीटिंग रखनी है, मीटिंग कैंसिल नहीं करनी है। तो बहन ने बोला, मेरी दादी बोलते हैं मीटिंग रखनी है, मैंने कहा ठीक है। हम बैठे तो मीटिंग चली, 10:30 शुरू हुई, रात को 7 बजे तक चली। कितना घंटा? तो इतना घंटा मीटिंग चली, फिर दादी की तबीयत ठीक नहीं, तो मेरे को चिंता, तबीयत ठीक नहीं है, दादी मीटिंग चालू कर रही है, पर हर 2-3 घंटा बोले, कारोबार के संबंध मीटिंग होती थी, बोले अभी 2-3 मिनट हम शांति में चले जाएं, मीटिंग में चला अभी बातचीत नहीं करें
जी।
तो 2-3 मिनट शांति में चले जाते थे, सब शांति में करके
जी जी जी,
और फिर बाबा के पास चली जाती थी
जी।
इतनी बार दादी को शक्ति आ जाती थी 2-3 मिनट बाबा के पास जाने में, बोले अभी ठीक है, अभी मैं ठीक हूँ, अभी थोड़ा मेरे को फील हो रही थी थकावट की, अभी मैं फ्रेश फील कर रही हूँ, फिर मीटिंग शुरू। ऐसा 2-3 टाइम किया ऐसा
जी जी,
2-3 घंटे के बाद
दादी को मतलब परमात्मा की शक्ति ही निरंतर
बहुत
चलाती
रही। बहुत
जी जी,
हाँ, ऐसे तक 7 तक मीटिंग चली। फिर ये 2-3 मिनट शांत में जब भी बैठते थे 2-3 घंटे में, दादी परमात्मा की शक्ति मिलती थी, थकावट गुम, कुछ भी पता नहीं पड़ता, दादी ठीक है कि नहीं, मीटिंग चालू रखती थी। तो ये दादी से मैं सीखा हूँ अथक बनना
जी।
कैसे भी क्या भी कारोबार हो, क्या भी सेवा हो, क्या भी मीटिंग्स हो, क्या भी हो, 2-3 मिनट चले जाओ बाबा के पास, और फिर बाबा इतनी शक्ति भर देता है, थकावट चली जाती है
जी।
तो दादी की ये विशेषता देखी हमने
जी। और अंतिम समय में दादी जैसे जब शरीर छोड़ रहे थे, उससे पहले किसी को ये था ही नहीं कि दादी चले जाएंगे, तो उस समय आपने क्या अनुभव किया दादी के साथ? और जब दादी ने शरीर छोड़ा, फिर आपको जब पता चला, तो कैसा एक्सपीरियंस हुआ, क्या महसूस किया उस समय?
ये भी वंडरफुल एक्सपीरियंस हुआ। क्या है कि दादी को ऐसे सिचुएशन 3-4 टाइम हुई है
जी,
कि दादा अभी जा रही है, अभी शरीर छोड़ के जा रही है।
अच्छा,
जा रही है
जी।
लंदन में भी हुआ, भारत में भी हुआ। तो 10-15 साल पहले की बात है कि दादी की तबीयत इतनी ढीली थी कि अभी कभी भी चली जाए
जी।
तो वो थी लंदन में, मैं था ऑक्सफोर्ड में, रिट्रीट प्लेस पे मीटिंग थी हमारी ऑक्सफोर्ड में, रिट्रीट प्लेस में मैं हुआ था। तो दादी का फोन आया, दादी का फोन आया, तो मेरे से बात करना शुरू किया फोन पे, और ऐसी तबीयत ढीली थी, बात कर भी नहीं कर सकती थी, बहुत धीमे धीमे, और बहुत लंग का, चेस्ट का प्रॉब्लम, तो बहुत धीरे धीरे और मुश्किल से सांस भी खींच नहीं सकती, बात करना शुरू किया। तो बोली, देखो मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, मेरा कुछ भरोसा नहीं, मैं अभी भी चली जाऊँ, कुछ भरोसा नहीं है, ऐसा अभी कंडीशन है, मैं चली जाऊँ, और मैं आपसे बताना चाहती हूँ, मैंने अभी दादी प्रकाशमन से बात किया, दादी गुलजार से बात किया, और नेहरू भाई से बात किया है, रमेश भाई से बात किया है, सब मैं आपको बताना चाहती हूँ, कारोबार के संबंध में ये बात हुई है, और अगर मैं चली जाऊं अभी आप प्लीज फॉलो अप करना।
अच्छा।
मैंने कहा दादी मैं कल आ रहा हूँ वापस लंदन में, कल बताने नहीं, कुछ भरोसा नहीं श्वास का, मैं अभी चली जाऊँ। इतनी कंडीशन ऐसी दादी की थी, ऐसे दो तीन टाइम ऐसी हुई है कि अभी जा रही है। तो यहाँ अभी भी जो हुआ ना
जी,
ये अभी दादी कभी भी हॉस्पिटल में इतना टाइम नहीं रही है
जी, जी।
कभी भी नहीं रही है अहमदाबाद में, जब थोड़ा दिन रह के आ जाते हैं, अभी एक दो मास से उधर हॉस्पिटल में रही, फिर यहाँ भी जैसे समाचार आया हो रही है। और मेरा प्रोग्राम था मधुबन से अहमदाबाद जाके, बुकिंग मेरे को मिल गई बॉम्बे से जाके, फिर मैं जाऊँ लंदन में, क्योंकि वहाँ बड़ी अभी प्रोजेक्ट चल रही है ग्लोबल टी सेंटर की, अभी हमारी 70 करोड़ की प्रोजेक्ट चल रही है।
जी, जी, जी।
तो अभी मैं देख रहा हूँ, अभी तो यहाँ फैसिलिटी है कि इंटरनेट और यो मीडिया द्वारा मैं कारोबार संभाल सकता हूँ, लेकिन पहले तो नहीं हो सकता था सब 20-25 साल पहले, तभी तो मेरे को जल्दी जाना पड़ता था। तो अभी तो मैं यहाँ तभी मैंने कहा अभी काफ़ी टाइम हो गया मैं जाऊँ। तो मेरी बुकिंग हो रही थी, बुकिंग हो गई थी अहमदाबाद से बॉम्बे कंफर्म, और वहाँ से फिर लंदन। तो मैं जाने वाला था, दादी अस्पताल में थी ग्लोबल हॉस्पिटल में
जी।
तो मेरे को बाबा बोलता है ना, बुद्धि की लाइन क्लियर है और क्लीन है तो आपको टचिंग आएगी
जी।
कि आपको अभी क्या करना है, चाहे विनाश के टाइम या जब भी कोई भी अचानक कोई इमरजेंसी की बात होए तो बाबा टचिंग देगा। तो मेरे को टचिंग आई, सामान भी पैक किया था जाने का अहमदाबाद प्लेन में, हमारी पैकिंग 90% हो गई थी और कल हम जाने वाले थे। तो मेरे को संकल्प आया अभी दादी नहीं रहेगी, अभी जाएगी। अभी इतना टाइम पहले भी हुआ है, वो प्रैक्टिकल वो सिचुएशन से पास किया है, लेकिन अभी नहीं बची, ऐसा टचिंग आई और आप रुक जाओ। तो एकदम मैंने एयरलाइन को फ़ोन किया कि मैं नहीं जा रहा हूँ, टिकट कैंसिल करो
जी।
उसके बाद
तो मतलब दादी के शरीर छोड़ने से पहले ही आपने कैंसिल करा दिया।
फिर उसके बाद नेक्स्ट डे सब प्लेन बंद हो गए
जी।
गवर्नमेंट ने अनाउंस किए सब प्लेन, देश विदेश के सब प्लेन बंद हो गए। तो एक फायदा मेरे लिए ये हुआ कि मैं नहीं गया और एक दादी के लिए फायदा ये हुआ, दादी की इच्छा नहीं थी कि उसके शादी उसके शरीर छोड़ने में फ्यूनरल में कोई नहीं आए।
जी जी।
खर्चा कितना होगा हिसाब लगाओ
जी,
विदेश से बहुत आते थे
जी,
अब बाहर से भी बहुत हजारों आते थे। तो वो तो अचानक टिकट कितना भी खर्चा होके आते थे
जी।
अगर ये कोरोना नहीं होता था तो दादी का बॉडी 3 दिन पड़ा होता था कोल्ड रूम में, स्टोरेज में
जी, जी, जी।
वो सब बोलते हम आ रहे। वो आते थे, लाखों पाउंड खर्चे होते, लाखों रुपए करोड़ रुपए खर्चे होते थे
जी, जी।
एक तो ये, और दादी की ये भी इच्छा नहीं थी हमारे फ्यूनरल पे इतना खर्चा होए, सिंपल सेरेमनी होए, कोई फूल भी एक पैसा भी फूल के ऊपर खर्चा नहीं करे। तो दादी की मनोकामना बाबा ने पूरी किया
जी।
और मेरे भी जो बाबा ने मनोकामना पूरी की, टचिंग दिया कि आप नहीं जाओ, रुक जाओ। और जो विदेश में जो थे उनकी भी मनोकामना पूरी हो गई, क्योंकि आजकल ट्रांसमिशन ऐसे ही होती है, सब पता चल जाता है लाइव ट्रांसमिशन से, फ्यूनरल देखो उसके बाद जो भोग ऑफर किया है सब उनको क्लियरली दिखाई पड़ा, सब बड़े बड़े सेंटर में, छोटे सेंटर में, बड़े सेंटर में बड़ी स्क्रीन है, छोटे सेंटर में छोटी स्क्रीन है, और वीडियो है, टेलीविजन है, सब पता पड़ता है। तो उन्होंने सब कुछ देखा, किसकी भी आश जो दादी की देखने की थी फ्यूनरल की, सबकी आश पूरी हो गई, दादी की आश पूरी हुई। और हमारे जो मैंने दादी को बोला था, दादी बोला आप जल्दी आओ मधुबन में, साल में से एक बार आता हूँ। मैंने कहा दादी मुझे टाइम नहीं मिलता, कारोबार इतना बड़ा है, मैं बहुत बिजी रहता हूँ, साल में 2 बार आओ। मैंने कहा बीच में नहीं आ सकता हूँ, लेकिन दादी को बोला मैं गारंटी करता हूँ जब भी आप शरीर छोड़ेंगे मैं यहाँ आ जाऊँगा
जी।
दादी हंसी मजाक में बोला, ऐसा हंसी मजाक मतलब रियलिटी हो गया वो. तो फिर दादी के शरीर छोड़ने के पहले मैं यहाँ रुक गया
जी.
टचिंग भी आई बाबा की, नहीं जाओ, पर नहीं गया. उसके बाद सब प्लेन रुक गए. तो बाबा ने कहा समय आएगा प्लेन सब रुक जाएंगे, आने का परमिट नहीं मिलेगा, लेकिन जिनको टचिंग होगी, जो जाने वाले होंगे वो रुक जाएंगे, जो आने वाले होंगे समय पे आ जाएंगे इधर, और उसके बाद सब समाप्ति हो जाएंगे
जी.
तो ये सब अनुभव मुझे हुआ वो टाइम में. टचिंग आई बाबा, बाबा अभी ऐसा टचिंग आई बाबा आई टाइम कि ये टाइम दादी नहीं बचेगी, ये टाइम जाएगी
जी.
ऐसा टचिंग दिया. तो मैं एकदम एयरलाइन को फ़ोन किया, टिकट कैंसिल करो, मैं नहीं आता हूँ. और फिर नेक्स्ट ईयर सब एनी वे प्लेन सब कैंसिल हो गया
जी.
अगर जाता भी था तो वापस नहीं आ सकता था, चाहे बॉम्बे में होता था समाचार, तब प्लेन सब कैंसिल हो गए, प्लेन ट्रेन सब कैंसिल हो, नहीं आ सकता था
जी.
तो बाबा हर एक की मनोकामना पूरी करता है
जी.
आपकी पूरी किया होगा बहुत
जी. हमारी भी बहुत मनोकामनाएं परमात्मा ने पूरी की है. भ्राता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ दादी जी के और अपने खुद के भी इतने अनुभव शेयर करने के लिए. तो दर्शकों आपने देखा कि भगवान क्या नहीं कर सकता. जैसे जैसे हमारे दादाजी ने, रतन दादाजी ने बताया कि सच्चा मन हो और मन में सफाई हो तो भगवान हमारी इच्छा पूरी करने के लिए बैठा ही है. और दादी जी से जुड़े और भी अनुभव हम ऐसे ही बहुत अनुभवी व्यक्तियों से जानते रहेंगे, सुनते रहेंगे. तो बने रहिए हमारे इस कार्यक्रम के साथ, कंपेनियन ऑफ गॉड दादी जान की. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. फिर से मिलेंगे. आज के लिए इतना ही. आज्ञा लेते हैं. नमस्कार. ओम शांति.